نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في قران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد العلي الفضل والمرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد بیماری کے لیے صحت اور بیماری دونوں چیزیں ہیں انسان کے ساتھ, ضروری نہیں کہ ہر وقت انسان صحت مند رہے, بیماری تو آتی ہے. تو بیماری کے لیے انسان رجوع کرتا ہے کسی ڈاکٹر کی طرف, طبیب کی طرف, اسباب اختیار کرتا ہے. مختلف قسم کے علاج ہیں, ایلوپیتھی ہے, ہومیوپیتھی ہے, ہربل ہے, اور زیادہ تر یہی علاج چلتے ہیں. کسی بھی علاج میں آپ اپنے بیماری کا علاج کرانا چاہیں کسی بھی ڈاکٹر سے, تو علاج کی دو شرائط ہیں. کسی کے پاس چلے جائیں, ایلوپیتھی ہو یا ہومیوپیتھی ہو یا ہربل ہو. ہومیوپیتھی وغیرہ میں ذرا اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. دو چیز ہوتی ہیں علاج کے لیے, ایک تو دوا, دوا کے بغیر تو علاج نہیں ہوتا. دوا دے گا نا ڈاکٹر, ظاہر ہے, ٹیبلٹس دے, کچھ بھی دے. دوسری چیز جو ہے وہ بہت ضروری, دوا سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے, کون بتائے گا؟ ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں. دوسری چیز ساتھ ہی کہتا ہے اس کے, پرہیز. کہتا ہے نہیں کہتا؟ کہتا ہے ڈاکٹر, بھائی یہ دوا لے جو خوب کھٹی چیزیں کھاؤ گلا صحیح ہو جائے گا, کہتا ہے ٹھنڈی چیزیں پیو صحیح ہو جائے گی. یہ تو میڈیسن میں, میڈیکل میں تو ڈاکٹر کو دوا دے کے فارغ کر دیتے ہیں, زیادہ زور نہیں دیتے اس چیز پہ. ان کو پہلے پتا ہے کہ دوا خود اپنا کام کرے گی, گلا تو صحیح کرے گی لیکن پیٹ خراب کرے گی, گردے صحیح کری جگر ختم کرے گی. ان کی تو دواؤں میں اثر ہے ایسا ہی. لیکن پھنس جائیں آپ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس تو جان کھا جائے گا آپ کی. گولی تو بعد میں دے گا, پہلے ایک گھنٹے کا لیکچر دے گا آپ کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر. یہ نہیں کرنا جی, وہ نہیں کرنا جی, کھٹا نہیں کھانا, پورا نہیں کھانا, آدھا گھنٹہ پہلے, 20 منٹ پہلے, ہوتے ہیں نا ایسے, کرنا پڑتا ہے. گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اس کو کہتے ہیں پرہیز. ہربل کے پاس جائیں, ہربل ڈاکٹر پہ, وہی حکیم صاحب نفس دیکھ کے بتاتے ہیں, وہی پرہیز پہ زیادہ زور رکھتے ہیں, بڑے گوشت نہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ, کرتے ہیں نا, کہ واسطہ پڑا ہوگا. ہم لوگ زیادہ بچنے کے لیے بھی سائڈ افیکٹس اور میڈیسن سے بچنے کے لیے ہم پینی حضرات کے پاس جاتے ہیں, پھر یہ باتیں سننی پڑتی ہیں, یہ بھی نہیں کھانا ہے, یہ بھی نہیں کھانا, تو بے چاہیے مجھے بھی کھائیں کیا جی, یہ بتاؤں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا گاجر کھاؤ بس. یہ شرط ہے علاج کی, بھائی دوا لے آئے آدمی اور دعا کے بعد پرہیز کرے. اب گولی کھائے جائے, دوا کھائے جائے, پرہیز نہ کرے تو میڈیسن جو ہے اثر نہیں کرتی, آدمی صحیح نہیں ہوتا. پھر کس سے شکوا کرے آدمی؟ کبھی نہیں, بہت اپنا قصور ہے کہ ہم پرہیز نہیں کرے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ علاج جو ہے وہ پرہیز جو ہے علاج سے بھی بہتر ہے, کہتے ہیں نا بڑے لوگ. اسی طرح یہ جس طرح ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے دو شرائط ہیں, اس لیے ہماری جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی دو شرائط ایسی ہیں, دو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی. تو جسمانی بیماری پر تو ہم توجہ دے دیتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے, موت ہی ہے نا, قبر ہے, تو جان ہے. اس کے بعد اگر آدمی بیمار ہو جائے نہ صحیح تو کہاں جاتا ہے, اینڈ تو موت ہے. لیکن روحانی بیماری جو ہے وہاں اینڈ ختم نہیں کرتی, وہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا. وہاں पूरा कुरान ये बता रहे हैं। हम तो अंधे हो गए ना, बेसमझ बैठे हैं, मस्त दुनिया में मस्त हैं, चीख चीख के कुरान की आयत हमें बताती है। उस बीमारी की तरफ देखो जो शुरू ही कहाँ से होती है, मौत से शुरू होती है उसके साथ, उन बीमारियों के दुनिया में ही उसका साथ चलते। जहरी बीमारी के तो दुनिया में असरात हमें नजर आ जाते हैं, देख लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन रूहानी बीमारी के जो किस्से हैं वो कुरान से समझ आते हैं। जितना इंसान कुरान से शगब रखेगा, मोहब्बत रखेगा, अहदीस और कुरान के साथ चलेगा, जितना समझेगा उसी कदर उसको जो पैगामात मिलेंगे वो इस दुनिया के नहीं बल्कि कहाँ के मिलेंगे, उस आने वाली दुनिया के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो नजर नहीं आ रही हमें, ये तो नजर आ रही है, तो यहाँ तो क्या बताया अल्लाह ताला, वो तो खुद देख रहे हैं, पता है हमें भी कट्टी चीज से गला खराब हो रहा है पता है, नजर आ रहा है, ठंडी चीज से ये काम खराब हो रहा है पता चल रहा है, लेकिन वो जो चीजें हैं छुपी हुई हैं नजर नहीं आ रही, तो अल्लाह करीम ने उसके लिए एक ऐसा सिस्टम रख दिया कि उससे फायदा वही उठाएगा जो मुझ पर यकीन रखेगा। ये यकीन की दर्जे पर रखती है, जिनके यकीन पक्के होते हैं वो सफा उठाया, हमने सालिहात देखा, ईमान उसके बाद अच्छे अमल, बस खत्म। अब यकीन पे कि कौन कितना यकीन करता है कि ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत क्या है इंसान की, अच्छे अमालात हैं। अब जितना यकीन होगा, जिसको यकीन हो गया तो सारी सारी रात उस पर एहतियात करता है, लंबी लंबी सजदे करता है, लंबी लंबी इबादत करता है, हर चीज कुर्बान कर देता है किसी अमल सहला के लिए। यकीन है ना, जैसे किसी को यकीन हो जाए कि इस मर्ज के बाद मेरी मौत है तो वो इंतहा कर देगा इलाज की, क्यों भागे फिरते हैं, अमेरिका भाग रहा है, कहीं जा रहा है, इंडिया जा रहा है, भागे जा रहे हैं, किस तरह मैं बच जाऊं, मौत से बच जाऊं, करते ना कोशिश, क्यों? यकीन है हमें मरना, हार्ट अटैक से मरना ही मरना, हर कोई जगह उसने कह दिया आपकी एक ट्यूब बंद हो गई, उसने मरना ही मरना ही, अब उसको यकीन है मौत का, इस बीमारी का यकीन है, इस यकीन से वो क्या करेगा, भागेगा, हर बल मेहमती वे हवा भार इधर हर वक्त को फिक्र होगा किस तरह मैं बच जाऊं, मौत का खौफ है उस पर कुछ नहीं, कितना यकीन है इसको मैंने मरना है, ये बीमारी मुझे मार देगी। अल्लाह के बंदे, अल्लाह कुरान कहते हैं कि तुम्हें मेरे बात पर इतना भी यकीन नहीं, मैं कहता हूं कि जो रूहानी बीमारी है तुम्हें मौत के बाद मारेगी, जब तुम मर जाओगे तब मारेगी, असल जिंदगी तो वो है जिसमें तुम मरोगे। तो जो जिनके यकीन होते हैं उनको फिर बिस्तरों पे कहाँ नींद आती है, उनके कितने फिक्र होते हैं कि भाई ये मुझसे झूठ क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, मुझसे ये दुनिया क्यों नहीं ख़त्म हो रही, मुझसे सूद क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, मेरी आँखें क्यों नहीं सही हो रही, फिक्र होता ही नहीं होता। सुभान अल्लाह, एक आयत का तर्जुमा ज़हन में है, अल्लाह ताला कहता है कि भाई जब इनके अमाल गलत मलत होते हैं ये तो बोला है तो मेरी रहमत उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है, हम तो उन्हीं में से हैं ना, हलाल हराम जी वो गलत मलत होने शुरू होते हैं, अल्लाह कहता है मेरी रहमत मुतवज्जह हो जाती है उसकी तरफ। अल्लाह अकबर, तो ये रूहानी बीमारी, इसकी भी वही है, क्या शरायत है, सही होना या नहीं होना, उन्हें इसलाह करनी या नहीं करनी, ये तो बहुत यकीन की बात है, क्या इसलाह करनी है, सबसे पहले कि भाई जिससे हमें अजाब मिलने हैं, जिन चीज़ों से मौत से जो अजाब शुरू होने हैं, मौत से मुराद क्या, ये सब वहाँ से शुरू हो जाते हैं, जान निकलना शुरू होती है, मुख्तलिफ तरीकों से इंसान की जान निकलती है, अल्लाह अकबर। और किसी की जान तो ऐसी निकलती है कि जैसे गुलाब का फूल सूंघते हैं ना आदमी, ऐसे सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, कितने आसान। और किसी की ऐसी निकलती है कि जैसे आटे के अंदर बाल निकल गया, और किसी की ऐसी निकलती है हस्तली का खोला गाले आंकड़े होते ना, आंकड़े समझ लें कि कांटे, कांटों का बहुत बड़ा गुच्छा हो इंसान के मुंह पूरे जिस्म के अंदर डाल दिया जाए, एक एक कांटा जो है इंसान की पोस्ट गोश्त के अंदर पस्त हो जाए, जुड़ जाए, और फिर उसको बड़ी जोर से ताकत इंसान खींचना शुरू करे बाहर निकालने के लिए। एक और मिसाल दिए कि एक 100 तलवारों के बाद एक साथ इंसान के जिस्म पर पड़ना शुरू करे, एक ये भी मौत इंसान के निकलने होती है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है आदमी के, किस चीज पे, कि जिसने अल्लाह की बात पे यकीन किया कि एक मौत इस हालत में आएगी तो उसने किस मौत की तैयारी की, कि मेरी मौत ऐसी आ जाए जैसे गुलाब का फूल सूखता हूं, जिंदगी बाकी है, सांस बाकी है, जब तक आखिरी सांस बाकी है इंशाल्लाह इंसान कोशिश कर ले आखिरी सांस तक, तो उसको ये मौत नसीब हो सकती है। हमारे पास तो अभी बहुत माशाल्लाह ख्यालों में तो बहुत कुछ पड़ा है, अभी तो मकान बनाने हैं, अभी तो बड़ोच जाना है, फिर वहाँ शादी करनी है, वो दो तीन मकान जो किराए पे दिए हैं उनके किराए लेने हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से पैसा मिलेगा, फिर यहाँ आएंगे, फिर बच्चों को उमरा जाना है ना, प्रोग्राम बहुत से है ना, कई शादियाँ होती हैं रोज, कई बातें होती हैं, कई बाजे बजते हैं, कई ड्रामे होते हैं, कई चीजें बनती हैं। अल्लाह अकबर। तो इसी हिसाब से देख रहे हैं अभी बहुत प्रोग्राम है, तो क्यों ना आज से शुरू कर दें, कर दें शुरुआत से, करना भाई आज से, क्यों ऐसी मौत अल्लाह से मांगो। कितनी किसने बताई अल्लाह ताला ने मौत की, देखें बताइए नहीं बताई कि फूल की तरह मौत आ जाए। एक दफा मैंने बात प्रैक्टिकल करता ना, मैं कोई नेक आदमी तो नहीं हूं ना कोई अच्छा आदमी हूं, लेकिन दुआएं तो अल्लाह से मांगता है ना कि अल्लाह ताला तू ये गीत मुझे बताए, मौत का जो खौफ एक दफा मुझे इतना चढ़ा, बस खौफ चढ़ा मौत का, होना चाहिए ना आदमी को, डली हो गया जैसा पढ़े जाओ कुरान, मौत तो आए ना, मौत की आयतें, मौत की आयतें, मौत थे, तो कुछ भी सख्त दिल है आप तो मशरा नेक आदमी गुनाहगार सियाकार आदमी का तो हाल ही क्या होगा भाई, रोना पीटना अल्लाह मौत क्या है, बस इसी है ठक से कोई नींद नींद आ गई सो गई, तो क्या देखता हूँ अल्लाह करीम दिखाते हैं किस मौत की, फूल की बात की कि जैसे मौत आने वाली है, मुझे मौत की हालत हो गई है और मैं बहुत घबराया हूँ, वो जो हालात थे ना साजिश परेशान था, इससे पहले मुझे ये मौत की जो ये बात नहीं पता थी, तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो, मौत की किस्में थी, आंकड़ वाली मौत निकलती है, जिसम कांपता है या क्या है, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं इतना तैयार हूँ मेरी मौत होगी, ये तो अल्लाह ताला ने बताया कि इस मौत की तैयारी कर तू, ये ना समझ मैं अपनी बुजुर्गी जता रहा हूँ आप, बिल्कुल नसीब बता रहा हूँ, अल्लाह करीम ऐसे इंसानों को नसीब करते हैं कि तूने अगर शौक डर है मौत का इतना है, अब ये ना समझ, दो चीज़ें ना सोचने की, इसलिए पहले क्लियर करता हूँ, मेरे बात बारे में लोग बहुत बदगुमानी करते हैं, बड़ी गलत बातें फैलाते हैं, ये कहते हैं अपने बारे में, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, वल्लाह मैं कसम खा करता हूँ, मैं तो कभी याद अपने आप को घटिया से घटिया गुनाहगार से गुनाह कहता हूँ, मैं शायद इस बस्ती में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं, वर्बली नहीं कह रहा, हकीकत बात है, लेकिन बदगुमानी का इलाज क्या करे, क्योंकि जब बातें मैं ऐसी करता हूँ तो कुछ बुजुर्ग सोबत में बैठने की बात ये कोई चस्के मजे कोई अपने मस्ती में बात कर जाता हूँ, लेकिन मतलब ये नहीं होता कि भाई मैं कोई अपनी बढ़ाई दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं अब मेरी आदत पड़ गई जब से बदगुमानी फैली है ना मेरे बारे में, ये कहता है अपने आपको तो मैं उससे भी अच्छा हूँ, मैं उससे भी अच्छा हूँ, तो मुझे भी तशरीह करनी पड़ती है बात की, आप तो खैर अपने आदमी हैं लेकिन बार बार बहुत जल्दी बदगुमानी कर लेते हैं मेरे बारे में, मैंने भाई बहुत आजीज आदमी हाथ बांध कहता हूँ, मैं तो आपकी जूती कोई खाक भी नहीं हूँ, आपसे लोगों का मोहताज हूँ, तो ये बदगुमानी दूर करने के लिए कहता हूँ कि ये अल्लाह ने इसी वक्त मेरे दिल में डाली ये बात, इनको क्लियर कर ये चीज, ये फूल वाली बात ये बता रहा हूँ जो मैं आपको मौत वाली बात, ये तशरीह कैसी प्यारी होगी कि मुझे ये तंबीह की गई है कि तू गंदा आदमी है, अगर अच्छी मौत चाहता है तो ऐसी मौत ले जिसमें तुझे दिखा रहा हूँ, समझा गई बात, अब बुजुर्गी निकल गई ना, अब आपको जहन जो था अपने आप बुजुर्ग समझ रहा है, अब तो नहीं कहेंगे ना ये शो मार रहे आपको, क्लियर होगी बात नहीं, जिसकी नहीं हाथ खड़ा कर और एक्सप्लेन कर दो, क्लियर, ये घटिया आदमी है। तो मैं लेटा और लेटने के बाद तो जब इसी कैफियत में मैंने देखा कि तैयार है मौत, अब देख रहा हूँ आंकड़े आते हैं या मौत के रिश्ते आते हैं, बहुत हाल ये हमी हो रहा है, जरा एकदम देखा कि गुलाब का बहुत खूबसूरत फूल ऊपर से ऐसे टपका, मैं उसको ऐसे पकड़ा, पकड़ के जैसे इशारा किया सूंघ इसको, मैं जो सूंघा सूंघ के साथ ही मेरी जान निकल गई, अल्लाह ऐसा लुत्फ और लज्जत था मौत में। फिर मुझे ये बात है कि बाद लोग ऐसे भी होंगे जो मौत की लज्जत इतनी अच्छी होगी कहेंगे बार बार हमें मार, शहीदा होंगे, शहीद होंगे, इतनी लजीज चीज मौत, वो कब बनेगी लजीज, आज आपने खोया बनाना है खोया, ठीक है ना, खोए बनाया दूध डालेंगे खूब चीनी डालेंगे, पता नहीं कैसे बनाते हैं उसे बनाना नहीं, एहतमाम करेंगे ना उसका खूब, इसी तरह है अगर इस मौत का जो फूल वाली मौत है, जो एक बाल वाली निकल जाने वाली मौत है, जवान हैं, पांच पांच रोटी खा जाते हैं, तीन तीन चूजे खा जाते हैं, इतनी फिशें खा जाते हैं और बिरयानी खा जाते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तवानाई दी है, सेहत दी है, आओ मिलके कोशिश करें कि जब इस दुनिया से जाएं तो ऐसे ही जाएं कि जैसे गुलाब गिरता है और सूंघ लेता है। नहीं चाहिए, नहीं तो बात बता रहा था आपको कि रूहानी बीमारियों की इलाज कौन लोग करते हैं, भूल गए शाह फिर मातुस्तक, कौन लोग करते हैं ये लोग, भूल गए, जिनका यकीन अल्लाह पे ज्यादा होता है, वो तो छुपी है ना सारी, हमें तो नहीं पता कि झूठ क्या होगा, गिबत क्या होगा, रूहानी बीमारी जो है जितनी भी। तो जैसे जैसे आमाल इंसान गुनाह करता है, इतनी सख्त इंसान की क्या होती जाती है, मौत, ये तो पहला स्टेप है, इतनी सख्त मौत होती चली जाती है। बोलो झूठ, खाओ हराम, खाओ गलत चीज, एक हल्की सी लज्जत के लिए कितनी बड़ी अजियत को इंसान कबूल कर रहा है, कितनी बड़ी अजियत को कबूल कर रहा है, एक झूठ बोल के थोड़ा फायदा तो हो गया, नफा तो हो गया, उसने क्लेम तो कर दिया, किया ना क्लेम, जेब में पैसा भी आ गया, लेकिन उस झूठ के बाद कितनी सख्त 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 तरीन चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ इस तरह हो जाए लेकिन ये थोड़ी देर के लिए चीज मेरे पास आ जाए। खुदा की कसम, जो इस कसम की बात सुनते मैं ऐसे लोग देखा है कि उन्हें हजारों लोग जो बेईमानियों से कमाई हुए थे अपनी जिंदगी में, जिन्होंने लिखे हुए थे, उनके जिस्म काम गए, उन्होंने उन तमाम पैसों को सदका कर दिया, ये मैंने हराम से कमाया है, गलत चीजों से कमाया है, जमा मैंने इसको किया हुआ है और मैंने तो इतनी खाना है, इससे तो मैं खाऊंगा नहीं, बाहर उन्होंने खाना, लेकिन सारी ये चीजें इतनी सख्त कर देंगी मेरी मौत को, मेरी आखिरत को, कि जिसको कोई भी मुझे नहीं बचा सकेगा, और जान तो निकलनी निकलनी है। तो क्या किया, खौफ से सारी निछावर कर दिए, सब कैसी की तैसी है, हराम का एक पैसा उसने रखा, करना चाहिए नहीं, तब मजा आता है, तब मजा आता है बात का। तो यही दो चीजें हैं, टाइम ही नहीं होता बात करने का, मेरी बात खत्म ही नहीं होती, जल्दी जल्दी करो। तो दो चीजें हैं बीमारी, दुनिया की बीमारी के लिए डॉक्टर दो चीजें बताता है, नंबर एक बोलो दवाई, बताए ना दवाई, दूसरी चीज क्या, अब चलिए बोलो सुभान अल्लाह जोर से, सो फिर गो
सुभान अल्लाह,
फिर बोलो
सुभान अल्लाह
जी, अब जाओगे माशाल्लाह। बहुत बड़ी तारीफ की हमने सुभान की, कभी इस पर शुरू कर दिया ना मैं बात करना कि सुभान है क्या चीज, तो आप हैरान, इस पर इंशाल्लाह बात करनी है मैंने नेक्स्ट टाइम, ये सुभान अल्लाह क्या है, क्या चीज है। अच्छा तो ये दो चीजें बताते हैं, एक क्या है दवाई और दूसरी, और ये जो है हमारा जिसको हम समझ गए हैं कि भाई हमने करनी है, तो भाई बड़ी खतरनाक, इस वक्त तो समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी कैसी जाए बीमारी की, मौत ही आएगी ना आ जाए, फिर भी इंसान परहेज ना करे, खाता रहे, मैं तो कहता हूँ खाता अल्लाह माने, इस पर तो और भी काम चलता है ना, जाहरी बीमारी और भी काम चलता रहता है, भरोसा अल्लाह पे, देखी जाएगी आज तो खाना ही जाओ, बर्फी देखी जाएगी, शुगर कैसी की तैसी, शुगर वाले ज्यादा मीठा खाते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं दो टीके लगा लेंगे यार क्या फर्क पड़ता है, दावत में है दो ही लगाने पड़ेंगे, आज दो लगा लेते हैं चलो इंशाल्लाह खा ले, आज तो देखी जाएगी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दुनिया की बीमारी चल जाएगी, अल्लाह न्यूज देखता है वैसे ही सही कर देता है इंसान को बीमारी का, क्योंकि दुआ है ना, भाई कह रहा था वहां यहाँ दवा चल जाती, वहां नहीं चलेगी दुआ, वहां दरवाजे बंद हो जाएंगे दुआओं के, वहां तो चलेगी हकीकत। तो उसके लिए दो चीजें क्या जाएंगी, सेम दवा और ये, आज गौर से सुन लेना मेरी बात, मुख्तसर करता हूँ बात, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना ख्याल नहीं था जितनी अच्छी बात ये बन जाएगी, मेरे जहन में इतनी प्यारी बात बनने की बिल्कुल ख्याल नहीं था, बहुत खूबसूरत बात बनी है। दो चीजें जिसको आज हम समझ गए कितनी अहमियत है, जिसको हम इस्लाही ताल्लुक कहते हैं, क्या कहते हैं, जो हम नखरे में अपने इस्लाही ताल्लुक को नहीं करें, यह है जिसका हज़रत थानी का फर्ज है, ना समझ आती है कि फर्ज जान ये कैसे है, क्यों है ये, कितनी सख्त जरूरत है इसकी, किसी इस्लाही ताल्लुक की, ड्रामा से नहीं समझे इसको। दो चीजें इस्लाही ताल्लुक कह लें, इलाज कह लें इसको, रूहानी इलाज, इसका दूसरा नाम क्या है, इस्लाही ताल्लुक। पहली चीज क्या है, दवा, जैसे उसके लिए दवा चाहिए थी इसके लिए भी क्या चाहिए, और दूसरी चीज क्या बताया था, इसका भी परहेज है, पांच पांच पाउंड दो मुझे तुम बताऊ आपको, मुफ्त इलाज कर दे इतना बड़ा, جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں, قبروں سے بچا رہا ہوں. جو 5 پاؤنڈ دے گا ہاتھ کھڑا کرے, ہاتھ ہی نہیں کھڑے کرے. دیکھو اب اس کی 2 چیزیں چاہیے. کیا چاہیے؟ دوا اور پلیس. پہلی چیز دیکھیں دوا. دوا لکھواؤں گا پہلے, آپ نکالیں کاغذ پینسل, دیکھیں کتنا بڑا نسخہ آپ کو دیتا ہوں. پریز بعد میں اللہ کریم بتاتے ہیں اس کی دوا, بہت بہترین دوا ہے. اے ایمان والو, کس کو کہہ رہے ہیں؟ کتنا پیار اس چیز میں اللہ سے پکارتا ہے انسانوں کو, اے میرے ایمان والو. کبھی دیکھا ہے آپ چھوٹے سے ہو رہا, آپ کی امی کہہ رہی ہو اے میرے پیارے بیٹے ادھر, کتنا مزہ آتا ہوگا. آتا نہیں بچے کو, وہ پھر نخرے کرتا چپکتا ہے, میرے لال ادھر آ, میرے چاند ادھر آ, میرے جگر ادھر آ. ہوتی ہے ماں دیوانی, جیسے جیسے پیارا ہوتا جاتا نا بچہ, وہ مست ہوتی جاتی ہے. اس کا پخانا بھی پیارا لگتا ہے, اس کو پیشاب بھی پیارا لگتا ہے. نیپی اتنا مزہ آتا ہے اس نے اتارنے میں نا, اور جھانک جھانک کے دیکھتی ہے اس نے پخانا کیسے کیا ہے. یہ پیار اور محبت. اللہ اپنے جب اپنا اپنے بندوں سے جب پیار کرتے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس, اے میرے پیارے, اے مجھے ماننے والو. اللہ اکبر, یعنی یہ ریکمنڈ ہو گیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا تم مجھے ماننے ہی والے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, نہ اس نے کہا, قدر نہیں نا ہمیں تو کیا پتا کہ اللہ کی محبت کتنی بڑی چیز ہے, کتنی محبت سے ہمیں بخار ہے خدا کی قسم. بلکہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت اس آیت پہ ہم پہنچتے ہیں تو ہم پہ جذب تاری ہو جاتے ہیں, اللہ مجھے اتنی پیار سے بلا رہا ہے, رب کریم اتنی آواز اتنی محبت سے مجھے پکار رہا ہے, میرا خالق مجھے بلا رہا ہے. میں اتنا گندا غلیظ انسان اور مجھے کہہ رہا ہے میرے پیارے ماننے والے بات تو سن میری. تو اللہ, اللہ کہتا ہے میرے سے ڈرو. میرے سے ڈرنے میں مراد کیا ہے یہاں سے؟ میرے سے ڈرو یعنی ان اوقات ان وقتوں سے ڈرو جو تم خراب کر رہے ہو. موت سے ڈرو, حشر سے ڈرو, قیامت سے ڈرو, موت کی قبر کی سختیوں سے ڈرو. تق اللہ, یہ ہے نا اللہ کا خوف, اس کو کہتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ عالم زیادہ بیٹھے مولانا, یہی ہوا نا تق اللہ کا مت. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اللہ کو ایسی چیز ڈرنے والی چیز تو نہیں ہے. اللہ سے تو پیار کیا جاتا ہے. اللہ کہے گا مجھ سے ڈرو, اللہ کہنا مجھ سے پیار کرو. ہم تم سے پیار کرو, میں تم سے پیار کرتا ہوں. تو تقلّہ کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ اپنے آپ سے نہیں ڈر رہا بلکہ ان حالات سے ڈر رہا ہے کہ جو ہم پیدا کر رہے ہیں. جاہل الزام تقلّہ, کیسی پیاری تشریح آئی ہے میرے خیال میں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ اللہ سے کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ اس کا ترجمہ مجھ سے ڈرو. اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے پیار کرو. ہمیں کہہ رہا ہے ان چیزوں سے ڈرو جو تم خود پیدا کر رہے ہو اپنے لیے. کتنی کتنی گندی چیزیں پیدا, یعنی مال صلاح کرو اپنے. تقلّہ یہاں کہ اپنے آپ کو صحیح کرو, صلاح کرو اپنی. تقلّہ سے یہ مطلب نکلتا نا, میرے پیارے اپنے آپ کو صحیح کر. اب جواب آتا ہے الگ, کیسے صحیح کریں؟ بیماری بتا رہے ہیں, وہ بیمار اپنے آپ کو صحیح کر, کیسے صحیح کریں؟ اللہ کا طاقت ہے. اب یہ دوا کیا آ رہی ہے؟ میرے پیارے سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. آ گئی دوا؟ نہیں آئی دوا؟ فرسٹ کلاس دوا دے دی اللہ پاک نے. کہ اگر تو خود ہی کہہ رہا, اگر تو صحیح ہونا چاہتا ہے میرے بندے, میرے پیارے, ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے, قبر سے, سختی سے, موت سے, موت پیاری چاہتا ہے, تو کیا کر؟ صادقین, میرے جو پیارے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جا, ان سے تعلق کر لے. اس کو کہتے ہیں اصلاحی تعلق. اور اس کا طریقہ بتایا, ان کا ہاتھ پکڑ کے, ان کا جا ہاتھ پکڑ, دامن پکڑ, اور دونوں مل کے کیا کرو؟ اللہ ہمیں معاف کر, تو واحد لا شریک, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دونوں بےچارے, وہ جو ڈاکٹر اس کا ہاتھ پکڑا ہے مریض نے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کے اندر داخل ہو رہا ہے ہاسپٹل میں شخص, اس نے ہاتھ پکڑا ہے اس کا, اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے, اور دونوں کس طرف جا رہے ہیں؟ اصل طبیب کی طرف جا رہے ہیں. اشہد اللہ تو پاک ہے, ہم تو تجھے بھولے ہوئے تھے, چلا تیرا حبیب سچا ہے, تو سب سچا ہے, ہم آج مان گئے اس چیز کو. پھر ساتھی کہتے ہیں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب, ہم تمام چیزوں اللہ تعالیٰ تو سے معافی چاہتے ہیں. ابھی کہتے ہیں تو اللہ کہتا جا میں نے معاف کیا, ختم ہوئی بیماری نہیں. اس کو کہتے ہیں اصلاحی تعلق. جس نے کیا ہے ہاتھ کھڑا کر لے, جس نے کیا ہے تعلق, اور جس نے نہیں کیا چپ کر کے آج کر لے. इसको वैद कहते हैं। अब मर्जी आपकी, कुरान कैसे बता रहा, दवा मिली, मिल गई दवा, इसको कहते हैं सहबत शेख, सहबत भी कहते हैं, दर्ज हो जाने हो जाते हैं, दर्ज हो गया अल्लाह की किताबों में कि भाई इसने अपनी दवाई शुरू कर दी है, कर दिया। इसके साथ क्या हुआ, अब हमारा काम क्या है कि जब ये इस्लाही ताल्लुक शुरू हो गया तो दो चीजें फायदा उठाने इस दवा से, हमने मुकम्मल एक दवा हमें डॉक्टर दे रहा है, हमने मुकम्मल उससे फायदा उठाना है उस दवा से कि उसी टाइम पे पीना है, उसी तरह पीना है, उस तरह हमने दवाई का इस्तेमाल करना है। तो अब इस सोहबत का, इस तरीके का असल फायदा क्या होगा, सोहबत का कितना बड़ा फायदा है आप देखिए, अल्लाह एक ही फायदा बताता हूँ, और एक बड़े आदमी की सब बहुत इस दिल में बताने को दिल कर रहा है लेकिन एक बता के खत्म करता हूँ, वरना जिक्र नहीं रहेगा। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, सुना है ना, फतह है बारी, मुझे एक कॉल जहन में आ गया इसी इस पर, एक फरमाते हैं कि ये जो सोहबत का मामला है, तबारी उठा कर देख लें कितने बड़े हैं, सुना होगा नाम आप, कहते हैं ये सोहबत का मामला है, उसके बाद कहते हैं कि तुम मालूम है कितना बड़ा इनाम है इसका, इन्ना जली से हम यद्रजु माह, कहते हैं ये इतना बड़ा इनाम है इसका कि जो इंसान जिस इंसान के साथ सोबत रखता है अल्लाह सुबहाना ताला जो इनामात उसके लिए देता है उसमें उसको दर्ज कर लिया जाता है। कहां मैं और कहां अल्लाह का वली, कहां यहां एक मरीज और कहां एक डॉक्टर, सोचें यानी कहां मरीज और कहां डॉक्टर। अल्लाह कहता है कि उसकी बक्कत ये फतवारी की क्या होता है कि यंद्रज उसको हमने दर्ज कर लिया उन्हीं इनामात में, जो इनामात मैं अपने डॉक्टर पर उतार रहा हूं उसके उस इलाज पे आने के लिए कि मेरे इस डॉक्टर के पास इलाज के लिए है, मैंने इस पे वही इनामात दर्ज कर लिए। वो मरीज रहेगा भाई, पहले सोबत के अंदर ही काम बन गया अल्लाह के फजल से, उसको उसका तो सोबत से ही काम बन गया। देखिए लेकिन सोबत के साथ पूरा फायदा उठाने के लिए एक और चीज सुन लें, वो क्या है, मजा आ रहा है नहीं आज बोले फिर
सुभानअल्लाह।
देख या हम क्योंकि आप माशाल्लाह सूफी हजरात हैं और ये मजलिस भी हमारी सूफियों की यहाँ कायम होती है, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए मस्जिद वालों को कि हम यहाँ बुला लिए और हम भी अपने अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं बैठ के, वो ये तस्किए की बातें हो जाती हैं, वरना बाकी मस्जिद तो चलती हैं मस्जिदों में, ऐसी मस्जिद वालों के लिए भी दुआ किया करें कि जो सूफियों को इकट्ठा कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनसे और भी नेक काम लेने की तौफीक नसीब फरमाए। तो अर्ज क्या कर रहा था, दूसरी चीज पूरा फायदा हम लेना है दवाई की, सब पूरा फायदा लेते हैं, टाइम पे खाएं टाइम पे खाएं, जैसे एक कैप्सूल ले रहे हैं एंटीबायोटिक का, हर चार घंटे के बाद आपने खाना है, छह घंटे के वक्त लिखा होता है ना, अब ये सोबत का तो फायदा हो गया ही हो गया, दवा का तो ले लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो चीज मिली हमें, लेकिन पूरा फायदा इसका लेने के लिए क्या है, पूरा फायदा लेके जब आप जिस अल्लाह वाले की सोबत में जाए, अब ये आप और सुन, सिर्फ सोबत ही नहीं लेकिन क्या है उसके साथ ये जरूरी रखें कि जो उस आदमी का अमल आप देखें या उससे जो बात आप उससे सुने उस पर हमने अमल करना है, तब पूरा फायदा होगा। याद रखें खाली सोबत नहीं, बस हाथ पकड़ ली इस्लाही ताल्लुक हो गया, अक्सर लोगों को देखा इस्लाही ताल्लुक हो गया, कहाँ हो गया, वो जाके जी दिल्ली में किसी के जाके, वो जो अपने यूपी में मध्य प्रदेश के तो उधर हो गया, किसी का कहीं हुआ किसी का हो गया पता नहीं किधर पहाड़ों के ऊपर, नहीं ताल्लुक अगर इस्लाही ताल्लुक रखना है तो इतना जीपी बनाना है तो नजदीक से नजदीक बनाए ताकि ऑन वॉक चले जाएं, सर में सख्त दर्द हो रहा कौन ड्राइव करेगा कैसे जाएगा उल्टी लगी हुई है, इतना आसान बनाए दो कदम चले तो जीपी आपके आज दवा ले खा के बैठ जाए, नहीं ये भी अल्लाह का फजल करम होता है, इसको क्या कहते हैं, कितनी बड़ी चीज है अलग लेकिन फायदा उसी, ये भी अल्लाह ने कहा ना कि लोग गड़बड़ करते हैं, ये तू बोला है मैं अपनी रहमत से मुतवज्जा होता हूँ, अल्लाह ताला इंसानों को गुनाहगारों को जो इस तरह लुत्फ होते हैं हमारी तरह उनको मौका देता है, हर मुसलमान को हर ईमान वाले को अल्लाह मौका देता है जिंदगी में कि उस किसी नेक इंसान तक उसको किसी जरिए से भेजता है, धक्के के जरिए किसी ना किसी उसको समझ ना हो लेकिन उस दर तक उसको पहुंचा देता है, और जो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह उससे फायदा उठा जाता है। एक और बात मुझे याद आ रही कि उस सोबत का एक और फायदा बताया गया, वो क्या होता है
वो सद शक शकी कहते हैं कि बदबख्त से बदबख्त होता है, बाबख्त बन के निकल जाता है। उसको खुद नहीं पता मैं कैसे आया हूं, किस तरह आया हूं, लेकिन बाज बदबख्त ऐसे होते हैं कि समंदर के पास पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन उससे प्यास नहीं बुझा सकते, पैसे आए तो पैसे ही वापस चले जाते हैं। अल्लाह, यहां पता चलता है कि हिदायत किसके अख्तियार में है, मौला के अख्तियार में। बहुत अपनी जिंदगी मैंने देखे, बहुत देखे, पहुंचते पहुंच जाते हैं, सब कुछ धक्के देकर उनको पता है कितनी जिंदगी बाकी है, कि जिंदा रहेंगे, कितना अच्छा अल्लाह पाक चांस देता है कि किसी अपने दोस्त के पास पहुंचा देता है, डॉक्टर के पास पहुंचा देता है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं होती कि आगे बढ़ के वो कदम उठा के कहते हैं कि जी हम तौबा करना चाहते हैं, वहीं से बेचारे प्यासे आए तो प्यासे वापस चले जाते हैं, उनका कंडे खराब हो जाते हैं, फिर कहां मुड़ के आता है, फिर आऊंगा कौन आता है, ये तो अल्लाह के करम होते हैं कि ऐसे गंदे मंदे इंसानों को तो अपनी रहमत से मुतवजा करते हैं, किस वजह से, उनमें ईमान है, ईमान की वजह से, ये दोस्त की आग से बचे, फायदे उठाने वाले फायदे उठा जाते हैं, बदबख्त आते हैं बाद सादत चले जाते हैं। तो ये फायदा सोहबत के साथ सबसे बड़ी चीज हमें क्या देखनी है, उस जिसके पास अल्लाह ताला भेजेगा उसका अमल भी खूब होगा और उसका बोलना भी खूब होगा, तो तुम सुनने वाला भी खूब हो जाओ, बोलो सुभान
अल्लाह,
ऐसे हो जाओ कि उसके जब मजलिस में आओ जो उसको देखो और जो सुनो अल्हम्दुलिल्लाह कसम खा के जाओ कि हम इसमें अमल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह की रहमत हम पे आई है, हमें कौन समझाने वाला है, ये अल्लाह की जात है जो हमें ऐसी मौत देना चाहती है जो फूल की तरह मौत होगी, हम खाली चले जाएं, हम अपने दामन को खाली झंझोड़ के चले जाएं, हमने मरना नहीं है, कितना रहीम और करीम है मेरे मौला के गुनाह गुनाहों के बावजूद भी हम तक ये पैगाम पहुंचा देता है और हम इतने मुतकब्बर होकर वहां से निकल जाए, नहीं, हम वहां बैठे हैं, हमने उस इंसान का अमल भी देखा है, हमने उसको सुना भी है, हम वादा करते हैं अपनी जिंदगी में हम इंशाल्लाह अल्लाह करीम तुमने हम पे रहम फरमाया है, हम शुक्र गुजार बंदा बनना चाहते हैं, जो चीजें आज हमारे दिल में आई हैं हम वादा करते हैं हम उस पर अमल करेंगे। जो शैतान नफ से डर गया, नहीं बड़ा कमजोर है फला वो है, वो कभी कभी भी बहादुर नहीं हो सकता, बहादुर बन के आए और बहादुर बन के निकले, दलील बन के निकले इंशाल्लाह, नफ्स और शैतान के साथ पूरा मुकाबला करेंगे, क्यों, इन्नल्लाह मा सादिकीन, अल्लाह यहबुल मुत्तकी, अल्लाह ने कितनी कितनी बशारतें दी हुई हैं कि तुम मुत्तकी बनने का सोचो और मेरी रहमत तुम्हारे साथ चलना शुरू हो जाएगी, हम तो कमजोर हैं, हम बहादुर इसलिए बनेंगे, अल्लाह ने वादा किए हैं कि तुम ये बातें मैं तुम बता रहा हूं, अल्लाह ताला कहता है इस पर तुम अमल कर जाओ, तुम इंशाल्लाह मजबूत हो जाओगे इंसान, मौत अच्छी पा जाओगे। अब रहा परहेज की बात, तो जल्दी से आपको परहेज ही बता दूं, इलाज तो हो गया, समझ आ गया सबको, क्या इलाज है इसका, इसराही अच्छी मौत जो मैंने बताई फूल वाली, प्रैक्टिकल मेरे साथ हुई है फूल वाली मौत, उसका दवा तो पहुंच गई हमारे तक, समझे ना, दवा पहुंच गई, क्या कर रहा किसी ने इंसान की सोबत, और सोबत भी कैसे, जो देखे उसमें और जो समझे, जो अमल उसका है, दुनिया कह रही है फजूल है, आप कहें फजूल नहीं ये तो नूर है, नहीं मैंने बात समझे, वो फजूल हम कहें नूर, वो कैसे कि तुम्हें फजूल नजर आता है, तुम्हारे तुम्हारे दिलों पे गिरता गर्द पड़ी हुई है, खाक पड़ी हुई है, हमने जब उसको देखा तो हमारे दिलों से खाक उतर गया, हमें वो नूर नजर आया, इसके क्या होता है, अल्लाह ताला कहते हैं उनको क्या नजर आएगी, कभी चीज नजर ही नहीं आती, उनको हक नहीं नजर आ सकता, वो हक को नहीं देख सकते, वो लोग गिर्द गिर्द है उनके ऊपर से, हक देखने वाले देखते हैं, इतना सा बच्चा भी देखता है कि नूर क्या चीज है, उसको कहते हैं अमल ले गया और इलम लेके निकला वहां से, जो चीज देखो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उस शख्स को एक अल्लाह ताला ने तुम्हारा रहमत बना के भेजा है, जो चीज उसकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह सिद्क होगी, और उसका मियार क्या है, तभी कहा गया है इब्ने अब्बास ने पूछा कि या रसूलल्लाह हम एक नेक इंसान को कैसे पहचाने, नेक इंसान है, कोई नहीं कहा उन्होंने कि वो ये पढ़ रहा है, ये हदीस है, ये इलम है, इतना कुछ नहीं, एक बात बताई अल्लाह, तीन बातें बताई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास को, मौजूद है बुखारी के अंदर, देख लें आप हदीस, तीन बातें मैंने बास गवाए चीज, नंबर एक इसकी इन चीजों से मिलेगी हमें आखिरत और मौत, याद रखनी, इन तीन चीजों के साथ इलम है तो मकबूल है, कुरान है तो मकबूल है, हदीस है तो मकबूल है, तबलीग है तो मकबूल, ये तीन चीजें नहीं है अल्लाह ताला कहता है, तो तीन चीजें इंसान भी मकबूल नहीं है, कोई चीज मकबूल भी नहीं है, नंबर एक चीज जब उस इंसान को देखो जिसको पास हम तुम्हें भेज रहे हैं और तुम उसको देखने जाओ तो अच्छा है बुरा, तो पहली निशानी ये है उसको देखोगे तो तुम्हें अल्लाह याद आएगा, क्यों क्यों जिक्र ही उनका जिंदगी होती है, जिसको अल्लाह ही अल्लाह नजर आए, अल्लाह ही चलना, अल्लाह ही फिरना, अल्लाह ही सुनना, कसरत जिक्र अल्लाह, इस कदर इतना इतना कसरत से किया जिक्र हमने, काबिले जिक्र हो गए हम लोग। कितना बड़ा शेर, इतनी कसरत से किया हमने जिक्र, काबिले जिक्र हो गए हम लोग। ये है रशीद गंगवी रहमतुल्लाह की, ऐसा जिक्र किया कि आज गंगोई गंगोई हो जा रहा है, आज थानवी थानवी हो जा रहा है, आकाशमती हो जा रहा है, आज जिक्र रहमतुल्लाह की आवाजें बुलंद हो रही। क्यों? इतनी कसरत से हमने किया जिक्र कि काबिले जिक्र हो गए हम लोग। इतना अल्लाह का जिक्र करो, इतना कसरत से जिक्र करो, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारा जिक्र जारी करा
दूंगा।
अब समझे शेर, काबिले जिक्र हो गए यानी हमारा जिक्र शुरू हो गया, क़यामत तक उनके जिक्र चलते रहेंगे। ये बंद होगी फजाइल अमाल, फजाइल अमाल बंद होगी, मुझे बताएं ये खत्म हो सकती है? जैसे जैसे वक्त गुजरा है कई जमानों में छप गई है। आज से मैं आपको बताता हूं कि मेरी जिंदगी का पहली तब्दीली जो आई, मैं मक्का मुकरमे था, कहां था मैं, पहली जिंदगी बताऊं, ये आज से मैं कुछ 60 साल पहले, अभी हजरत से ताल्लुक भी नहीं हुआ था मेरा, उस वक्त की बात कर रहा हूं। जद्दा से मैं मक्का सफर कर रहा था, एक शख्स मुझे मिला, दोस्ती हुई, तो उसने कहा मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। हाँ, क्या तोहफा है? उसने मुझे फजाइल अमाल दिया। वो आज भी बोसीदा हालत मेरे पास मौजूद है, मैं पुरानी चीजों को छोड़ता नहीं हूं, यादगार बनाता हूं। 60 साल पहले मैंने कहा क्या किताब है? कहते जी इसको मेरे आपको तोहफा दे रहा हूं, कभी मौका मिले तो इसके 2 पेज पढ़ लेना। मैं तो सब खोलता हूं, खुदा की किस्म जिंदगी तब्दील कर दे
भाई। ये वो लोग हैं
काबले जिक्र हो गए हम लोग, अल्लाह पाक उनके जिक्रों को जारी फरमा देते हैं। ये नूर से बोलते हैं, नूर से लिखते हैं, अलहामी चीजें होती हैं, ये खत्म होने वाली चीजें नहीं होती। अल्लाह वाले बहुत अजीब चीज होते हैं, वो तो कायनात की रहमत होते हैं, रहमत हम समझते नहीं है। हमारा काम तो बस तनकीद तनकीद, निकालो भगाओ तोड़ो मारो झगड़े। अल्लाह के बंदों को जो अल्लाह वालों को कोई समझ जाए तो सुभान अल्लाह वो तो फिर इंसानी अजीब हो जाता है। काबिल जिक्र हो गए हम लोग, इतना अल्लाह को याद करो। पहली चीज क्या चीज है? क्यों उसको देख के क्या जाता है? अल्लाह। क्योंकि उसने अल्लाह को याद किया, उसका तो जिक्र बंद हो गए। रफान अल्लाह का जिक्र अल्लाह अपने हबीब के बारे में कहता है, और वो क्यों कहा? देखिए कितनी सी बात है, उसको कहा रफाना कि तेरा जिक्र क्यामत चलते ही रहेगा। ये एक अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन तारीफ की है। इस पर मैं दिल कर रहा था आज बोलने के लिए, कभी बोलूंगा इंशाल्लाह, टाइम होगा ना 1.5 घंटा, फिर मैं रफाना जिक्र आपके सामने बात करनी है, कि नबी की शान बयान करनी है। मैंने बड़े सारी रात नहीं सोया इस आयत के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल से 10-15 मिनट सोया हूँ, इस पर इंशाल्लाह कभी बात करूंगा। क्या ये, बस एक मुख्तसर सी बात करता हूँ कि नबी पाक जितनी भी तारीफें कुरान में आई हैं सारी तारीफें इसके अंदर बंद कर दूंगा। और यहाँ एक चीज जो बात समझ में आई क्या, कि ये जो है ना जो अल्लाह वालों के जो नाम रोशन होते हैं, वजह क्या है? इसी आयत की छुपी वजह क्या है कि वो सुन्नत पे अमल करते हैं तो वो भी रोशन हो जाते हैं, उनकी बुलंदी की वजह ही बनती है। ये जो फजाइल अमार है ये इस किताब से नहीं बनी है, ये इन हदीसों से नहीं बनी है, बल्कि हजरत जिकिर रहमतुल्लाह का जो फेल था सुन्नत का उसे इनको जिंदा कर दिया। रफान अल्लाह का जिक्र कभी बात करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, अर्ज कर रहा था परहेज। परहेज क्या है? इसका मुख्तसर क्यों बात बड़ी बंदी है, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, 15 मिनट रहेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा जिक्र करें। परहेज सुन लें इसका, क्योंकि अब हमने ये काम करना है ना, इसका परहेज करना है। सब परहेज जी भी कुरान साबित करता हूँ। सूरह नाम की एक आयत है 67 में, आयत याद नहीं आ रही, तर्जमा कर देता हूँ आपके सामने, कि भाई जब तुम देखो ऐसे लोगों को, कि जब ऐसे लोगों के पास तुम जाओ या देखो कि वो मेरे अहकामात का और मेरी आयत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो तुम वहां से उठ जाओ। यह है ना, याद हो गया, सूरह नाम की एक आयत है। तो यह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये मुस्तनद आयत है उस चीज की, कि जब इंसान तुम नेक सोबत में जाओ, जिसको मैंने आयत बताई कुरान से साबित है, इसी तरह कुरान से ये साबित है कि परहेज उसका ये होगा कि बुरी सोबत से भी तुमने बचना है। हाँ, ये याद है। ये नहीं कि हम इस्लाही ताल्लुक से एक अल्लाह वाले का हाथ पकड़ लिया और उधर सारे सब मामला चल रहे हैं, शादी में ऐसी हो रही है, सब चीजें ऐसी चल रही है, तो ये मजबूरी है शादी की? बिल्कुल नहीं। नाफरमानी में कोई इताअत नहीं, ये दीनी फरीजा है। परहेज करना दुनिया किसी भी खराफात वाली जगह पे, किसी अल्लाह वाले को किसी निस्बत रखने वाले को जिसने ये रास्ता पकड़ लिया है उसके लिए जायजे ही नहीं है, फर्जैन है ये कि वो उस सोबत से बच जाए, बेशक दुनिया सारी नाराज हो जाए, उसने उस जगह पर नहीं जाना जहां लहू लहाव हो, उस दोस्त का हाथ नहीं पकड़ना, उसके साथ नहीं फिरना, उसके साथ दोस्ती नहीं करना। मजाल क्या कि ऐसा आदमी जो नमाजें ना पढ़ता हो क्या यार, हाँ तबलीग के सिलसिले में ठीक है लेकिन उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। एहतियात रखें परहेज करने वाले कि जिसने अल्लाह वाले का हाथ पकड़ा है अगर पूरी तरीके से वो मौत चाहते हैं तो खाली सोबत काम नहीं आएगी, जैसे खाली दवा काम नहीं आती उसके साथ क्या काम आता है, परहेज भी काम आता है। इसी तरह खाली सोबत काम नहीं आएगी जब तक कि हम परहेज नहीं करें। तो बिल्कुल ऐसी सोबतों से, ऐसी जगहों से और ऐसी लिटरेचर से, हजरत फरमाते हैं ऐसी किताबों से, ऐसी चीजों से, हर चीज से भाग जाओ दूर कि नहीं नहीं हम इसके नजदीक में जाएंगे जहां लहू लहाब हो, जो गैर शरी हो, जहां पे आप देखते हो कि अहकामत खुदावंदी की पामाली हो जा रही हो, तो उसमें बेशक रिश्तेदारी या जो कुछ भी है कि नहीं जी ऐसी शादी में हमें कबूल नहीं, ऐसी रिश्तेदारी भी हमें कबूल नहीं, ऐसे मामला भी हमें कबूल नहीं, जहां जिसने हिकमतें निकाली, जहां जिसने अपने तरजीहत दी, मेरे रिश्तेदार है फलाया ये हो जाएगा नाराज हो जाएगा, तो उसको फिर ये सोबत काम नहीं आएगी, फिर उसकी मौत वही होगी जो मैंने बताई है, आंकड़े वाली सख्ती वाली अजाब कब्र, वो इसी तरह चलेंगे। दोनों चीजें हमारे दोस्तों हमारे सामने साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबूत ले लें, इस्लाह कर लें और अपनी मेहरबानी को खत्म कर लें। अल्लाह पाक कबूल फरमाए।